थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहकर कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी आप परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 19 अध्याय को देखा था और जिसमें हमने देखा कि झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाना जाए, अर्थात उनके लिए एक परीक्षण का चिन्ह दिया गया। इसके साथ साथ हमने 19 अध्याय में देखा कि शरण के शहर, भूमि का विस्तार, व्यवस्था का विस्तार। शरण के शहर में वे लोग जाते थे जिनसे गलती हो जाती थी, अर्थात गलती से किसी की हत्या हो जाती थी, तो वे उस शहर में जाकर अपने जीवन की रक्षा करते थे। परंतु उन लोगों के लिए जो जानबूझकर हत्या करते थे, कोई शरण स्थान नहीं था। उन्हें वहां से बाहर निकाला जाता था और उन्हें उस हत्यारे के परिवार वालों के हाथों में सौंप दिया जाता था ताकि वे नाश किए जाएं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 20 से आरंभ करेंगे और इसमें हम देखेंगे व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई। तो आइए हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके माध्यम से आप हम सब से बातचीत करते हैं। आज आप हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को और हमारे एकाग्रतापन को खोल दें ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, क्योंकि आपका वचन दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। हाँ प्रभु, आज हमारे जीवन के उस कठोरतापन को, हमारे हठीलेपन को तोड़ दे ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं और जो अपने वैवाहिक जीवन की तलाश में हैं। पिता परमेश्वर, आप हरेक की सहायता करें, हरेक को शांति दें। धन्यवाद प्रभु हमारे विनती सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई, व्यवस्था विवरण की पुस्तक बहुत ही व्यवहारिक पुस्तक है जहां पर आज हमारा वर्तमान जीवन होता है वह इसे छूती है। हालांकि यह नियम इसराइल को दिए गए थे, फिर ये बुनियादी सिद्धांत मानव जाति की खुशी और उसके फायदे के लिए अपना भरपूर योगदान दें। यदि उन्हें आधुनिक देशों के नियम के साथ मिला दिया जाए तो मैं विश्वास करता हूं कि जिस व्यक्ति ने हमारे देशों के संविधानों को बनाया था वह बाइबल के द्वारा चलाए जाने वाले लोग थे। समस्या आज यह है कि आज हमारे पास ऐसा समाज है कि जो ऐसे लोगों को मिलाकर बना है जो बाइबल से पूरी तरह से अनजान है। और जहां तक बाइबल से जुड़े होने का सवाल है तो कानून को बनाने वाले मूर्ख हैं। जिन नीतियों को बनाने में वे गलती करते हैं वे हमें जिंदगी भर तक रुलाने के लिए काफी हैं। उसका कारण यह है कि वे परमेश्वर से दूर हैं और उसकी बातों का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं करते हैं। यह व्यवस्था विवरण की पुस्तक उन समस्याओं को सुलझाती है और जिसे वाशिंगटन ने अपने तरीके से सुलझाने का प्रयास भी किया था। हमारे व्यवस्थापक इन परेशानियों से सदियों से जूझते आ रहे हैं और आज भी बहुत से देश इसके द्वारा प्रभावित हैं। उसमें हमारे सेना में पाए जाने वाले जवान सैनिकों की समस्याओं को सुलझाया गया है। वे यह पहचानने में परेशानी महसूस करते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें हमें सेवा करनी चाहिए और किन में सेवा नहीं करनी चाहिए। इसराइलियों की भी ऐसी ही समस्याएं थी। परमेश्वर ने कुछ ऐसे नियमों को रखा जो एक व्यक्ति को युद्ध में जाने से रोकते हैं। बहुत ही स्पष्ट रूप में ऐसा सोचता हूं कि यदि हमारी सरकार ने इस संदर्भ में परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान दिया होता तो आज हम लोग इस दुर्दशा में नहीं पड़े होते। मेरे मित्रों, व्यवस्था को नियत करने वाली लड़ाई, आइए देखें व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह तेरे संग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ इसराइल के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और मैं विश्वास करता हूँ कि वह आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण ही है। हम बहुत छोटे छोटे पुस्तकों को पढ़ते हैं जैसे प्रेम करे लड़ाई नहीं, यह सुनने में अच्छा लगता है, परंतु बहुत से ऐसे कहानियां हैं, बहुत से ऐसे बेमायने वाले कहानियां हैं, क्योंकि हम एक पापमय संसार में जीवन व्यतीत करते हैं और जहां पर मनुष्य का मन पूरी तरह से दुष्टता से भरा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है कि जब लड़ना पड़ता है तब लोग लड़ते हैं। कई बार ऐसा समय भी आता है जब हमें अपना बचाव करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी लड़ाइयां भी होती है जिनमें एक तरफ परमेश्वर खड़ा होता है। मेरे मित्रों, आज स्पष्ट रूप में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर देश को पूछना चाहिए और विशेष करके उन देशों को जो मसीही देश होने का दावा करते हैं, कि इस लड़ाई में क्या परमेश्वर हमारे साथ है? और यदि परमेश्वर इस युद्ध में शामिल नहीं है तो मुझे भी इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हम व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके 2-4 पद में पढ़ते हैं, और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इसराइलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो, तुम्हारे मन कच्चा ना हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। ध्यान दीजिए कि यह कुछ ऐसी बात है जो युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चिंत रहें कि आप परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने उन्हें इन देशों से युद्ध करने के लिए कहा और उसने वायदा भी किया कि वह उनके साथ होगा। अब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए 4 ऐसी शर्तों को रखा है जिसके कारण मनुष्य युद्ध में नहीं जा सकता। आइए देखें व्यवस्था विवरण 20 उसके 5 पद में लिखा है, फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। यदि किसी व्यक्ति ने नया नया घर बनाया हो और उसे उसमें एक भी दिन रहने का अवसर प्राप्त ना हुआ हो तो वह युद्ध में ना जाए। क्यों? क्योंकि उसका हृदय स्वाभाविक तौर पर घर की ओर ही लगा रहेगा। उसने अपना हृदय और अपना प्रेम उस घर के लिए निछावर कर दिया है। वह उस घर में रहना चाहता है और उसे उस घर में रहने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 20 उसके 6 पद में लिखा है, और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल ना खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। मित्रों, ये लोग अग्रेरियन थे और ये किसान थे। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी अभी अपने व्यापार को आरंभ किया है और अभी अभी एक बगीचे को लगाया है, क्योंकि उसे अभी तक उस बगीचा की दाख खाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए उसे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। उसका मन उसकी बारी में लगा रहेगा, उसकी रुचि वहीं पर है, उसे तब तक वहां पर रहना है जब तक कि वह उसका फल न खा ले और जब तक कि वह स्थिर ना हो जाए, नहीं तो वह कहीं युद्ध में मर जाएगा और दूसरा व्यक्ति आकर उसकी मेहनत की फसल को काटेगा। यह वास्तव में रुचिदायक है ना भाई? जी हाँ। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह ना लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ में मंगनी कर लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है तो उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए, अर्थात उसे ले जाया नहीं जाना है। वह उस लड़की के साथ में प्रेम करता है और वह उसके साथ में विवाह करना चाहता है, उसे घर में उस लड़की के साथ में रहने दिया जाए क्योंकि उसका मन वहीं पर लगा है और युद्ध में उसे नहीं ले जाना चाहिए। और यह रहा अब चौथा कारण, व्यवस्था विवरण 20 उसके 8 पद में लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए, ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाब टूट जाए। मेरे मित्रों, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुले आम कहता है कि उसे डर लगता है, मुझे लड़ने से डर लगता है और मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, अर्थात नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ 4 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण किसी भी व्यक्ति को युद्ध में नहीं ले जाना चाहिए। मैंने शायद पहले 3 कारणों को इस्तेमाल न किया होता, परंतु हो सकता है कि मैं चौथे कारण का इस्तेमाल करता। यदि वह व्यक्ति भयभीत, कच्चे हृदय का और डरा हुआ है तो उसे युद्ध में जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि मैं मुड़कर घर चला जाता क्योंकि मैं घर में रहना पसंद करता। मेरे मित्रों, यह सिद्धांत गिदोन की सेना में इस्तेमाल किया गया, इसे प्रयोग किया गया। शायद आपको ध्यान होगा कि गिदोन ने अपनी लड़ाई की शुरुआत करीब 32,000 लोगों के साथ में की थी, जो उसके साथ अपने देश को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए गिदोन के साथ हो लिए थे। गिदोन एक व्यक्ति का नाम है। तब परमेश्वर ने कहा कि इस सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, अतः इनमें से जिन जिन लोगों को डर लगता है वे अपने घरों को वापस जा सकते हैं। जब इस प्रकार का कथन सामने आया तो करीब 22,000 लोग अपना सामान पकड़कर घर वापस चले गए। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, उसके पास अभी भी बहुत ज्यादा आदमी है, वे कैसे अलग किए गए थे? वे एक नदी के पास पहुंचे और उनमें से कुछ लोग अपने हाथ पैर के बल बैठ गए और पानी पीने लगे, परंतु उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी को पिया और उन लोगों को युद्ध में जाने के लिए चुन लिया गया। वे अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे, अतः वे ही लोग थे जिन्हें युद्ध में भेजा गया था और बाकी के लोगों को घर वापस भेज दिया गया था। मेरे मित्रों, अमेरिका में ऐसे जवान लोगों के सामने यह समस्या थी कि वे एक टुकड़ी में रहने से कतराते थे और वे अपनी टुकड़ी के सदस्य को भी जला देते हैं। मुझे उन जवानों से सहानुभूति है, परंतु भला होता कि वे देश की सरकार को कोसने या उन पर दोष लगाने के बजाय सामने आते और कहते कि हमें युद्ध में जाने से डर लगता है। यह एक अच्छी वजह है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उन लोगों को युद्ध से अलग रख दिया गया होता, मुझे ये स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं डरता हूँ। उदाहरण के लिए, मुझे अपने हाई स्कूल व कॉलेज के शिक्षा के दौरान अपनी माँ को भी संभालना था, क्योंकि मैं कभी यह साबित नहीं कर पाया कि मैं भी अपने माता पिता की देखभाल कर सकता हूँ। मैं अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी था, मैं हॉकी भी खेलता था, परंतु मैंने थोड़ा सा खेला और उसका आनंद उठाया। मैं भूल नहीं सकता कि मैंने उस फुटबॉल को मारने के पहले कैसा महसूस किया। जब सीटी बजी, मैं पीछे की पंक्ति में खेल को संभाल रहा था। वहां पीछे खड़े होकर मेरे घुटने जम जाते थे और कई बार ऐसा समय आया कि मैं एक ही घुटने के बल झुका। मैं बहुत अधिक डरा हुआ था, परंतु जिस क्षण वह बॉल मेरे पास आई और मैंने उस पर लात मारी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। परंतु फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस युद्ध भूमि में जाने का प्रयास नहीं करता। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहाँ पर यह कहते हैं कि वह चाहते हैं कि उनके लोग युद्ध में जाने से पहले दो बातों के बारे में जानें। सर्वप्रथम वे उसकी ओर होने चाहिए, उन्होंने उस तरफ से लड़ाई लड़नी चाहिए जो सही हो, और यह निश्चित जानते हैं या जानने चाहिए कि परमेश्वर उनके साथ है। दूसरा, वे उस विषय को लेकर उत्तेजित हो। एक ऐसा समय होता है मेरे मित्रों जब किसी व्यक्ति को अपने देश के लिए लड़ना होता है, और एक स्थान अपने झंडे और देशभक्ति के लिए होता है, परंतु जिस प्रकार से बातों को एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है उससे इन जवानों को समूह से नाता तोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। परंतु जिस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है वह बहुत ही बुद्धिमानी से भरा है। उसके पास अपने लोगों के लिए इस युद्ध के समय में भी अद्भुत योजना होते हैं। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 20 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए तब पहले उससे संधि करने का समाचार दे, और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वे सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरें। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करें परंतु तुझसे लड़ना चाहें तो तू उस नगर को घेर लेना। मित्रों, यहाँ पर एक और प्रमुख सिद्धांत दिया गया है। आपको शायद याद होगा कि जनरल डगलस मैक आर्थर उन लड़ाइयों में विश्वास नहीं किया करता था जिसे हम जीतने का इरादा नहीं करते हैं। इस प्रकार के समझौते वर्तमान में हमारे देश के लिए अभिशाप हैं, और कई बार हम इसे अच्छा या पुण्य समझते हैं। यह बात हमारी कलीसियाओं में फैल चुकी है और अब यह हमारी सरकार में भी पाई जाती है। हम बहुत अच्छे भाई बहन होने का दिखावा तो करते हैं। जिस प्रकार से मैक आर्थर ने यह चेतावनी दी थी कि उसके दिनों में एशिया में कोई भी जमीन के लिए लड़ाई नहीं करेगा, परंतु यदि हम लड़ाई करें तो उसे जीतने के लिए लड़ें, यह उसका उद्देश्य था। और ठीक यही बात परमेश्वर भी कहता है, जब तक कि हम जीतने के लिए नहीं लड़ते तो हमारा लड़ाई से कोई सरोकार नहीं है। परमेश्वर ने हमें बहुत से सिद्धांतों को दिया है, परंतु मेरे मित्रों आज हम उन सब से बहुत दूर हो गए हैं। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से जारी रखेंगे, और इस अध्याय का हमारा विषय है हत्या, विवाह व हठी पुत्रों के विषय में व्यवस्थाएं। यह अध्याय धार्मिक व राष्ट्रीय नियमों के उन विभाग को शामिल करता है जो अध्याय 8 के साथ प्रारंभ हुए थे। हम देखते हैं हत्या से जुड़ी जांच पड़ताल। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 से 4 पद को पढ़ें। लिखा है, यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले और उसको किसने मार डाला है यह जान न पड़े, तो तेरे सियाने लोग और न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे उसके सियाने लोग एक ऐसी क्लोल ले रखें जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उस नगर के सियाने लोग उस क्लोर को एक 12-मासी नदी की ऐसी तराई में जो न तो जोती और न बोई गई हो ले जाएं और उसी तराई में उस क्लोर का गला तोड़ दें। मेरे मित्रों, यदि कोई व्यक्ति प्रकट रूप से कत्ल कर दिया जाए और उसका शव कहीं मैदान में पड़ा हुआ हो या मिले, तो उस शहर के अधिकारियों को उसके नजदीक के शहर को खोजने के लिए नाप करनी होगी। तब उस शहर को उस कत्ल का जिम्मेदार माना जाता था। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को उस शहर के लोगों ने मारा है या उस शहर में मारा गया था, मगर फिर भी वह शहर उसकी हत्या का जिम्मेदार ठहरता है। तो उन्हें निम्न बातों को करना है। आइए देखें व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसके 5 से 9 पद में लिखा है, और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी सेवा टहल करें और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करें, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे, उसके सब सियाने लोग उस क्लोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहें, यह खून हमसे नहीं किया गया और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इसराइली प्रजा का पाप ढांप कर, निर्दोष के खून का पाप अपनी इसराइली प्रजा के सिर पर से उतार, तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यों वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तो तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। मेरे मित्रों, इस प्रक्रिया में एक बुनियादी सच्चाई दिखाई देती है। जब किसी शहर में कोई अपराध होता है, तो उस शहर के निवासियों की कुछ जिम्मेदारियां होती है। मेरे ऐसा विश्वास करने की वजह यह है कि आखिरकार उन संबंधित निवासियों के द्वारा मांग रखी जाएगी कि जो अपराध उनके सिर पर चढ़ गया है, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई नियम जरूर से ठहराया जाए। मित्रों, परमेश्वर उसके लिए एक समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हैं। यद्यपि उस शहर में वह कत्ल नहीं हुआ था, फिर भी वह शहर उस हत्या का जिम्मेदार है। उस शहर के पुरनियों को आकर उस शहर के लिए क्षमा मांगनी है और तब उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। मेरे मित्रों, हमारे देश में भी ऐसे बहुत से घटनाएं होती हैं। मैं नहीं सोचता हूं कि कभी ऐसा हुआ होगा। हमने हमारे देश में होने वाले अपराधों के लिए या उन बहुत सी बातों के लिए जो इस देश में हो रही हैं, कभी क्षमा नहीं मांगी है। यह अलग बात है कि हम कहें कि सच में यहाँ के हालात बहुत ही भयानक हैं, और यह बिल्कुल अलग बात है कि परमेश्वर के सामने जाकर कहें, हे मेरे परमेश्वर, हमें एक राष्ट्र के रूप में क्षमा कर दीजिए। परमेश्वर, आज हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि मसीह एक शहर के बाहर मारा गया था? जी हाँ, वह मारा गया था, परंतु उसकी मृत्यु उसके हत्यारों को बचा सकी। मेरे विचार से जिस सूबेदार को यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार दिया गया था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उद्धार को प्राप्त किया। मेरे मित्रों, पद 10 से 17 हमें बताता है कि बंधक बनाए गए स्त्री के साथ में विवाह करने के संदर्भ में कानून है। इसके अलावा पहलौठों के लिए कानूनी अधिकारों को सुरक्षित किया है। जहां दो शादियां हुई और एक पत्नी को प्रेम और दूसरी को नफरत मिलती है। हमने इस उदाहरण को याकूब के जीवन में भी देखा है। आइए हम देखें हठीले पुत्र के विषय में। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 21 अध्याय और उसके 18 से 21 पद में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी के हठीला और दंगैत बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाएं, और वे नगर के सियानों से कहें कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगैत है, यह हमारा नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियंकड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थरवाह करके मार डालें। यों तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इसराइली सुनकर भय खाएंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर उड़ाव पुत्र को लेकर नियम दिए गए हैं। यह समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु ने अपने उपदेशों के सुनने वालों को किस प्रकार से अचंभित किया जब उन्होंने उन्हें उड़ाव पुत्र की कहानी को सुनाया। जब वह पुत्र वापस आया, तो सुनने वाले सारे लोग अपेक्षा करते थे कि उस पर पत्थरवाह होने जा रहा है। आप कल्पना करके देखिए कि वे कितने अचंभित हुए होंगे जब हमारे प्रभु यीशु ने कहा कि पिता अपनी बाहें फैलाए हुए अपने पुत्र से मिलने के लिए आया। वे सोचते थे कि उस लड़के के साथ वैसा ही होगा जैसा वास्तव में उसने काम किया है। वह अपने जीवन में बहुत बुरा था और वह मृत्यु का हकदार था, परंतु पिता ने क्या किया? उसने अपने बेटे के चारों ओर बाहों को डाला और उसे चूमा। उसने कहा, आओ हम खाएं और आनंदित हों, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जीवित हो गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मेरे मित्रों, क्या आप खुश नहीं हैं कि हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं हैं? जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसके सामने अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो वह हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वह हमारी सारी अधार्मिकता को दूर कर देता है, बजाय न्याय के बदले में हमारे लिए वह दया करता है। परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए कितना अद्भुत और कृपालु और दयालु है, और वह हमें ग्रहण करता है जब हम उसके पास आते हैं। प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर के पास आते हैं? क्या आप अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ, वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि हम बचाए जाएं। वह चाहता है कि हम आशीष को प्राप्त करें। मित्रों, आज मेरे लिए और आपके लिए एक सुंदर मौका है। आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, और उस पुत्र के समान जो उड़ाव पुत्र था, उसने इस बात को जान लिया कि उसने गलती की है, और अपने पिता से क्षमा मांगा, और आज वह उसका बेटा कहलाया। आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु के निकटता में रहें। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु अपने साथ।